देखिए भाई सबक किताब पर,
फमा फीही अलमियतुन मुअस्सिरतुन अय कुल्लुस मिन गैर मुनसरिफिन तकूनु फीही अलमियतुन मुअस्सिरतुन फी मनअस सर्फ बिसबबियतिल महज़ति औ मअ शर्तियति बिसबबिन आखर واحترض بذلك عما تجامع ألفي التانيس أو صيغة منتهى الجموع فإن كل واحد منهما كاف في منع الصرف لا تأثير فيه للعلمية.
گزشتہ سبق میں ہم اسباب منع صرف میں سے آخری سبب وزن فعل پڑھ رہے تھے بھائی. इन्होंने आपको बतलाया कि वजन फेल जो है वो इसम का ऐसे वजन पर होना जिसको औजान फेल में से शुमार किया जाता हो, और ये वजन फेल ये सिफत होती है इसम के अंदर, यानी इसम ऐसे वजन पर है जिसको औजान फेल में से शुमार किया जाता है. लेकिन सिर्फ इतने वजन पर होना काफी नहीं, बल्कि शर्त यह है कि दो चीजों में से एक और चीज भी पाई जाए, या यूं कहो दो शर्तों में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए. या तो वो वजन खास हो फेल के साथ, यानी इसम में पाया ही ना जाए, वजह के एतबार से वो सिर्फ फेल में वजन पाया जाए अरबी जुबान के अंदर, तो इस पर इश्काल होता है. अगर वो वजन इसम में पाया ही नहीं जाता तो गैर मुनसरिफ ये तो इसम हुआ करता है, तो फिर ये वजन जो इसम में पाया ही नहीं जाता ये गैर इंसिराफ का सबब कैसे बनेगा. तो जवाब जिक्र हुआ था कि मतलब ये है कि इसम के अंदर अगर ये वजन पाया भी जाए तो ये फेल से मनकूल हुआ हो भाई, इसम के अंदर पाया भी जाए तो फेल से नकल होकर वो आया हो भाई. जैसे शमर, ये तशमीर से माजी मालूम का सीगा है, ये घोड़े का नाम रखा गया भाई. तो अब ये फाल वजन जो है इसम के अंदर पूरे कलाम अरब में हमें नहीं मिलता, तो ये फेल से नकल करके घोड़े का नाम रखा गया, तो ये सबब बनेगा गैर इंसिराफ का, क्योंकि ये वजन खास है किसके साथ, फेल के साथ. या जैसे जुरीबा है भाई, जुरीबा ये फोइला वजन, ये वजन भी खास है फेल के साथ, और ये मसलन किसी का नाम रख दिया जाए, किसी शख्स की पिटाई हुई, आपने उसका नाम ही क्या रख दिया, जुरीबा रख दिया, तो इसके अंदर एक वजन फेल है और एक आलमियत आ जाएगी, तो ये गैर मुनसरिफ होगा भाई. तो दो शर्तों में से एक शर्त होनी चाहिए, या तो वो वजन खास हो फेल के साथ और इसम में अगर पाया भी जाए तो फेल से नकल होकर आया हो, या वो वजन फेल के साथ खास नहीं होगा, यानी इसम में भी वो वजन पाया जाता है और फेल में भी वो वजन पाया जाता है, तो फिर उसके शुरू में हुरूफ अतैना में से कोई हर्फ जायद होना चाहिए, और नीज वो ता को भी कबूल न करता हो, ता को भी कबूल न करता हो. जैसे भाई फेले मुजारे के शुरू में हुरूफ अतैना में से कोई हर्फ पाया जाता है, तो इसी तरह ये वजन फेल जो है तो फेल का वजन, लेकिन फेल के साथ खास नहीं है बल्कि इसम में भी पाया जाता है, तो इसके शुरू में भी हुरूफ अतैना में से कोई हर्फ होना चाहिए, और नीज ये ता को भी कबूल न करे, इसलिए क्योंकि ये जो ताए तानीस है ये खासा है इसम का, ये सिर्फ इसम के साथ जुड़ती है, तो ये वजन फेल जो ता को कबूल कर लेता है इसकी मुशाबहत फेल के साथ कमजोर पड़ गई, क्योंकि ये किसको कबूल कर लेता है, ता को कबूल कर लेता है. चुनांचे जैसे मिसाल उन्होंने जिक्र की, यामलुन, यामलुन ये ताकतवर ऊंट को कहते हैं, और इसकी मुअन्नस यामलतुन आती है भाई, तो ये यामलुन देखो अब इसमें वजन फेल है और ये वजन ऐसा है जो इसम में भी पाया जाता है, यामल जाफर, देखो इसम के अंदर भी ये वजन पाया जाता है, तो मालूम हुआ ये वजन खास नहीं है फेल के साथ. तो फिर दूसरी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए थी, क्या कि शुरू में हुरूफ अतैना में से कोई हो, और यामल के शुरू में भी या है, और नीज वो ता को कबूल न करे, लेकिन ये तो ता को कबूल कर लेता है, लिहाजा यामल के अंदर ये वजन फेल गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि ये ता को कबूल कर लेता है. यहां इबारत आई थी, या तो वो वजन खास हो फेल के साथ او یکون غیر مختصن، یا وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو بھئی. میں نے بتلایا تھا کہ او یکون غیر مختصن، یہ غیر مختص کے الفاظ نکال کر صاحب جامی در اصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ او یکون کے بعد جو فی اولی ہی آ رہا ہے یہ یکونو کی خبر نہیں ہے بلکہ یکونو کی خبر غیر مختص ہے. وجہ یہ کہ یہاں او آیا بھئی، اور او آتا ہے دو چیزوں میں انفصال بیان کرنے کے لیے، جدائی بیان کرنے کے لیے کہ مثلا یہ عدد جفت ہے یا طاق ہے، تو او آتا ہے انفصال کے لیے، اور یہاں انفصال نہیں بن رہا تھا دونوں میں، اس لیے کیونکہ اگر فی اول ہی کو یکونوں کی خبر بنائے تو کلام کیا ہو جائے گا کہ وہ وزن یا تو فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے یا اس کے شروع میں اتینا میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے. توجہ ہے، یا وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے یا شروع میں حروف اتینا میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا فعل کے ساتھ خاص ہونا یا شروع میں حرف زائد ہونا یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل نہیں بنتے، اس لیے کیونکہ بعض اوزان ایسے بھی ہیں جو فعل کے ساتھ خاص بھی ہیں اور شروع میں حروف اتینا بھی ہے، جیسے یشکر اور یزید. یشکر اور یزید یہ کسی کا نام ہو، تو اب دیکھو یہ وزن کس کے ساتھ خاص ہے، فعل کے ساتھ خاص بھی ہے اور نیز شروع میں حروف اتینا میں سے بھی ایک حرف بھی موجود ہے، حالانکہ شرط سے تو کیا معلوم ہوا، یا وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا شروع میں کیا ہوگا حروف اتینا، حالانکہ یہاں دونوں چیزیں ایک ہی کے اندر پائی جا رہی ہے. تو او تو انفصال کے لیے آتا ہے اور ان دونوں کے اندر تو انفصال نہیں. تو جواب دیا تھا شارح جامی نے، او یکون غیر مختصن، کہ یکونوں کی خبر فی اولہی کو نہ بناؤ بلکہ غیر مختص کو بناؤ تاکہ دونوں میں انفصال آ جائے، دونوں شرطوں کے درمیان. شرط دو چیزوں میں سے ایک ہونا چاہیے، یا وہ وزن خاص ہو کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، او یکون غیر مختصن، یا خاص نہ ہو، خاص ہو یا خاص نہ ہو. تو اب دیکھو دونوں میں تقابل آ گیا، جیسے آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں میں انفصال حقیقی ہے. کوئی عدد ایسا نہیں ہو سکتا جو طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، اور کوئی عدد ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو دونوں سے ہی خالی ہو، دونوں سے ہی. تو اسی طرح وزن فعل بھی، یا تو وہ فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا، یہی دو صورتیں ہیں، یہاں کوئی تیسری صورت ہی نہیں ہے. دونوں بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا یکون کی خبر فی اول ہی کو نہ بناؤ بلکہ کس کو بناؤ، غیر مختص. تو اب یہ وزن مثلا فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا، تو شروع میں حروف اتینا کی بات ہی الگ ہو گئی. بات کیا ہوئی، وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا، اور شروع میں حروف اتینا ہو یا نہ ہو اس کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے خاص ہو، اس میں بھی شروع میں کیا ہو، اتینا ہو، ہو سکتا ہے اتینا نہ ہو، اور وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو اس کے بھی شروع میں ہو سکتا ہے حروف اتینا ہو یا اتینا نہ ہو. تو بہرحال جب وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو اسم میں بھی پایا جائے تو پھر شروع میں اتینا ضرور ہونا چاہیے بھائی، تو اتینا میں سے کوئی حرف شروع میں ضرور ہونا چاہیے. اس کے بعد یہاں پر فی اولہی کی ضمیر کے بارے میں بات ہوئی تھی، فی اولہی زیادتن، فی اولہی کی ہا ضمیر میں صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہ ہا ضمیر یا تو راجے ہے وزن فعل کو یا ما کان علی وزن الفعل، یعنی موزون کو راجے ہے. کس کو؟ یا تو یہ ضمیر راجے ہے وزن فعل کو یا ما کان علی وزن الفعل، یا مختصر لفظوں میں کہو یا ضمیر یا تو راجے ہے وزن فعل کو یا موزون کو راجے ہے، اور دونوں صورتوں پر اعتراض ہوتا ہے. اگر یہ ضمیر کس کو لوٹائیں، وزن فعل کو، تو پھر وزن فعل اس کا تو آپ نے معنی کیا کیا، وزن فعل کسے کہتے، وزن فعل تو ایک صفت کا نام ہے، ایک معنی کا نام ہے. آپ نے ہمیں کیا کہا وزن فعل کسے کہتے ہیں، کون الاسم علی وزن، اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو کس میں سے ہو، اوزان فعل میں سے. تو آپ نے وزن فعل کا مصدری ترجمہ کیا، اور مصدر کس کا نام ہے، ایک معنی کا نام ہے جس کا الگ خارج میں وجود نہیں، یہ کسی کی صفت ہوتا ہے، تو مصدر کا تو اپنا الگ وجود نہیں. تو آپ نے وزن فعل کا کیا معنی کیا، مصدری معنی کیا. معلوم ہوا وزن فعل ایک معنی کا نام ہے. تو انہوں نے کیا کہا، فی اول ہی زیادتن، اس وزن فعل کے شروع میں زیادتی ہو حرف کی. کس کی زیادتی ہو، حرف. بھائی شروع اور آخر تو لفظ کا ہوتا ہے، معنی کا تو شروع اور آخر نہیں ہوتا. معنی تو وہ مفہوم ہے جو ذہن میں آتا ہے کسی چیز کا، उसका तो शुरू और आखिर, लफ्ज का शुरू और आखिर होता है, जैसे जैद, जैद के शुरू में जा है तो आखिर में दाल है। तो इन्होंने क्या कहा, फी अव्वल ही ज्यादतुन, उसके उस वजने फेल के शुरू में ज्यादती हो। तो पहला एतराज ये कि भाई वजने फेल ये तो एक माना का नाम है, आपने इसका मस्तरी तर्जमा किया और माना का शुरू और आखिर नहीं होता। नीस क्या कहा, उस वजने फेल के शुरू में ज्यादती हो, यानी एक हर्फ जायद हो। भाई हर्फ जायद होना यह माना में तो नहीं होगा, यह तो लफ्ज में जायद होगा। माना के अंदर तो हर्फ जायद नहीं हो सकता, माना तो वो मफहूम है जो जहन में आया है, उसमें तो हर्फ जायद नहीं होगा। जायद हर्फ किस में होगा, लफ्ज के अंदर होगा। तो ये एतराज हुआ। और अगर ये जमीर राजे करें माकान आला वजनिल फेल, वो इसम जो वजन फेल पर है यानी मौजून को राजे करें, तो इस पर भी इश्काल होता है कि पीछे तो मौजून का कहीं जिक्र ही नहीं आया, माकान आला वजनिल फेल का जिक्र ही नहीं आया। वजन फेल का तो जिक्र आया, माकान आला वजनिल फेल का जिक्र तो नहीं आया। तो दोनों का जवाब मैंने जिक्र किया था कि अगर ये जमीर किसको लौटाएं, वजन फेल को, और आप क्या कहें कि वजन फेल के अंदर तो हर्फ जायद नहीं हो सकता, तो जवाब मैंने जिक्र किया था कि जमीर तो राजे है वजन फेल को, लेकिन मुराद माकान आला वजनिल फेल है। मुराद क्या है, तवज्जो है, या जमीर राजे है वजन फेल को या माकान आला वजनिल फेल को। वजन फेल को भी जमीर राजे करें तो मुराद माकाना आला वजनिल फेल ही है, यानी वजन फेल बोलकर मौजून ही मुराद है, यानी सिफत बोलकर मौसूफ मुराद है। जो इसम वजन फेल पर होगा वो है मौजून, और वजन फेल क्या है, उसकी सिफत। तो जमीर किसको राजे की, वजन फेल को, यानी सिफत को राजे की, और मुराद कौन है, मौसूफ मुराद है, सिफत बोलकर मौसूफ मुराद है। तो वजन फेल बोलकर मौजून मुराद है, और मौजून के शुरू में तो हर्फ की ज्यादती हो सकती है भाई, क्योंकि वो तो लफ्ज है भाई। बात समझ में आ गई। और दूसरा इहतमाल क्या था, जमीर किसको राजे करें, माकाना आला वजनिल फेल, उस पर क्या इश्काल था कि पीछे तो माकाना आला वजनिल फेल का कोई जिक्र नहीं हुआ, मौजून का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो जवाब ये कि जब वजन फेल का जिक्र हो गया तो मौजून का जिक्र भी हो गया माना के एतबार से, क्योंकि वजन फेल जिस इसम में पाया जाएगा वही क्या है, मौजून है। तभी यह सबब बनेगा गैर इंसिराफ का, जब किसी इसम में पाया जाएगा, और जिस इसम में पाया जाएगा वो क्या हुआ, माकान आला वजनिल फेल हो गया। तो माकान आला वजनिल फेल, इसका जिक्र लफ्जों में तो नहीं हुआ लेकिन मानन इसका मुकदम जिक्र हो चुका है। ये इसी तरह है जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वली अबवई ही लिकुल वाहिद मिनहुमस सुदुस, वली अबवई ही, मैयत के वालिदैन जो हैं, मां बाप जो हैं, उनके लिए, उनमें से हर एक के लिए सुदुस है, उनके लिए। अब सवाल पैदा होता है, वली अबवई ही, यहां जमीर राजे है मैयत को और पीछे तो मैयत का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो जवाब उलमा क्या देते हैं कि मैयत का जिक्र मानन हो चुका है। क्यों, क्योंकि बात वरासत की चल रही है, और वरासत वहीं पर होगी जहां पर कोई मैयत हो। तो जब वरासत का जिक्र चल पड़ा तो माना के एतबार से मैयत का भी जिक्र हो चुका। इसी तरह जब वजन फेल का जिक्र हुआ, और यह वजन फेल किसमें पाया जाएगा, इसम के अंदर पाया जाएगा, तो जब वजन फेल का जिक्र हुआ तो मानन मौजून का भी जिक्र हो गया। तो बहरहाल चाहे जमीर वजन फेल को राजे करें या माकान आला वजनिल फेल, दोनों सूरतों में मुराद माकान आला वजनिल फेल ही है। वजन फेल को भी राजे करें तो क्या मुराद है, माकान आला वजनिल फेल, यानी सिफत बोलकर मौसूफ मुराद है, क्योंकि वजन फेल के शुरू में हर्फ जायद नहीं हो सकता, मौजून के शुरू में हर्फ जायद हो सकता है। उसके बाद फिर बात आई थी ज्यादतुन की तरकीब। भाई ज्यादतुन के अंदर इन्होंने बतलाया था कि ज्यादतुन में तनवीन हिवज है मुजाफुन इले से, उस मौजून के शुरू में ज्यादती हो, ज्यादतुन आई ज्यादतु हरफिन, यह ज्यादतुन की तनवीन इवज है किस से, मुजाफिले से। जैसे अलिफ लाम इवज होता है कभी मुजाफिले से, इसी तरह यह तनवीन भी कभी इवज होती है मुजाफुन इले से। तो ज्यादतुन आई ज्यादतु हरफिन, भाई उसके शुरू में हर्फ की ज्यादती हो, तवज्जो है। तो एक तरकीब यह, और दूसरी तरकीब क्या कि ज्यादतुन ये मस्दर है, और मस्दर कभी इसमें फाइल के माना में होता है और कभी इसमें मफूल। तो यहां ज्यादतुन बमाने इसमें फाइल यानी जायद के हो जाएगा, जायद के। तो इबारत क्या बन गई, फी अव्वली ही जाइदुन बई, और जायदुन सिफत है, सिफत के लिए हमेशा मौसूफ चाहिए, तो इसका मौसूफ महजूफ निकाल लेंगे, अ हरफुन जायदुन, फी अव्वली ही हारफुन जायदुन। तरकीब समझ में आ गई। तो ज्यादतुन में कितनी तरकीबें, दो, या तो ये तनवीन इवज है मुजाफुन इलैह से, असल में क्या है, ज्यादतु हर्फिन, या ये ज्यादत किस माना में है, जायद के माना में है, और इसके लिए मौसूफ महसूफ है हर्फोन जायदुन। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब इस तनवीन को अवज बनाए मुजाफुन इलैह से, ज्यादतु हर्फिन, तवज्जो है, ज्यादतु हर्फिन जब इस तनवीन को अवज बनाए मुजाफुन इलैह से, तो फिर उस सूरत में भी सिफत की इजाफत हो रही है मौसूफ की। ज्यादतु हर्फिन सिफत की इजाफत है, भाई ज्यादतु हर्फिन ज्यादत है मुजाफ, हर्फिन है मुजाफुन इलैह, यह दरअसल सिफत की इजाफत हो रही है मौसूफ की तरफ। कलाम अरब में कभी ऐसे करते हैं कि सिफत को उठाकर मौसूफ पर मुकदम कर देते हैं और उसकी तरफ इजाफत कर देते हैं, जैसे रजुलन जारिबुन, रजुलन जारिबुन, रजुल मौसूफ, जारिबुन उसकी सिफत, इस जारिबुन को उठाते हैं और रजुल पर मुकदम कर देते हैं और फिर इसकी तरफ इजाफत करते हैं, लेकिन बराह रास्त इजाफत नहीं करेंगे, उसे मस्तर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मस्तर बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा? जरबु रजुलिन, रजुलन जारिबुन से क्या बना लिया? जरबु रजुलिन। सूरत समझ में आ गई? तवज्जो है, यहां भी ज्यादा तो हर्फिन है, तो असल में ये ज्यादत क्या थी? सिफत है हर्फ की, इसको जरा मुअख्खर करो और फिर इसे इसमें फाइल बना लो, क्या बन गया? हर्फुन जायदुन, असल में क्या था? हर्फुन जायदुन, फिर जायद को उठाकर मुकदम कर दिया और मस्तर बनाकर क्या कर दी? इजाफत कर दी। ज्यादा तो हर्फुन जायदुन क्या माना? ऐसा हर्फ जो जायद है, और ज्यादा तो हर्फिन का क्या माना? हर्फ का जायद होना, बात एक ही है या नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा तो हर्फिन कह लें या हर्फुन जायदुन कह लें भाई। उसके बाद का ज्यादती ही की बात आई, का ज्यादती ही आई, का ज्यादती हर्फिन फी अव्वल फ़िअल, इबारत क्या है? का ज्यादती हर्फिन के, जैसे कि हर्फ की ज्यादती होती है फी अव्वल फ़िअल, किसमें? इबारत पे नजर है, औ यकूना फी अव्वल ही ज्यादतुन, का ज्यादती ही, या उस मौजून के शुरू में भी ऐसे ही हर्फ जायद हो जैसे कि हर्फ जायद होता है फी अव्वल फ़िअल, किसमें? फेल के शुरू में। तो का ज्यादती ही हाज अमीर हर्फ को राजे है, तवज्जो है, तो क्या बन गई इबारत? का ज्यादती हर्फिन, का ज्यादती, और फिर इसमें वही तरकीब, या तो इसको इसी तरह रखें का ज्यादती हर्फिन, जैसे पीछे क्या आया था? ज्यादतु हर्फिन, और या क्या ज्यादती हर्फ ही, ये सिफत की इजाफत हो रही है किसकी तरफ? मौसूफ की तरफ, तो इनको सिफत मौसूफ बना दें, आई आई हर्फिन जाइदिन भाई फी अव्वलिल फेली, किसके शुरू में हो? फेल के शुरू में हो भाई। और नीज बताया था गैर काबिल के, इस हाल में कि वो वजने फेल या मकान आला वजनिल फेल ता को कबूल न करता हो भाई, और मैंने बताया था ये हाल है फी अव्वल ही की हाजमीर से भाई। फिर साहिब जामी ने आपको ये भी बतलाया था कि यहां मुसन्निफ को एक दो कैदें और भी जिक्र करनी चाहिए थी, गैर काबिल लिता इकियासन, ये कियासन की कैद भी लगानी चाहिए थी, व बिल एतबार लदीम तनामिन सरफ लि अजली ही, ये कैद भी लगानी चाहिए थी कि वो ताको कबूल न करे, कियासन यानी कियास के मुताबिक ताको कबूल न करे, कानून के मुताबिक ताको कबूल न करे, ताकि अरबाउ अगर किसी का नाम रख दिया जाए तो उसका एतराज वारिद न हो। अरबाउ भाई आप जानते हैं अरबा आदत के लिए वजह है, और यह ता को कबूल करता है, इसके साथ ता जुड़ती है, लेकिन इसके साथ ता खिलाफुल कियास जुड़ती है। वैसे तो आम लफ्जों में ता मुअन्नस के लिए जुड़ती है, लेकिन यह जो अदद के साथ ता जुड़ती है यह मुजक्कर के लिए है, यह तजकीर के लिए है। मसलन आपने मर्द के बारे में बताना हो चार मर्द, तो आप कहेंगे अरबातु रिजालिन, ता के साथ कहेंगे, और मुअन्नस के लिए कहना हो तो बगैर ता के कहेंगे अरबाउ निस्वतिन भाई। मालूम हुआ ये अरबा के अंदर ता कौन सी है? ये कियास के मुताबिक है या खिलाफुल कियास है? खिलाफुल कियास है, लिहाजा अब अरबा किसी का नाम रख दिया जाए तो एक इसमें अलमियत है, एक वजन फेल है, ये गैर मुनसरिफ हुआ, हालांकि यह तो ता को कबूल कर लेता है। आपने तो हमें क्या कहा, वो वजन फेल ता को कबूल तो अरबाउन ऐसा वजन फेल है जो फेल के साथ खास नहीं, इसम में भी पाया जाता है। और इसके अंदर शर्त क्या थी कि शुरू में हुरूफ अतैना में से कोई हो, अरबाउ के शुरू में भी हुरूफ अतैना में से हमजा है, और नीज दूसरी शर्त क्या थी, वो ताको कबूल न करता हो, यह ताको कबूल कर लेता है, लिहाजा इस वजन फेल को मुअस्सिर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह फिर भी मुअस्सिर है। अरबाउ किसी का नाम रखते हैं तो यह गैर मुनसरिफ है, क्यों, क्योंकि ये ता को कियासन नहीं कबूल कर रहा, बल्कि खिलाफुल कियास कबूल कर रहा, यह ता तानीस के लिए नहीं है बल्कि तजगीर के लिए है। नीस ये कैद भी साथ लगानी चाहिए थी कि ता को कबूल न करे उस एतबार से जिस एतबार से गैर मुनसरिफ है, किसी दूसरे एतबार से ता को कबूल करे, ताकि अस्वद का एतराज भी खत्म हो जाए। आपने पढ़ा है अस्वद ये काले सांप को कहते हैं, ये असल में तो काली चीज के लिए वजह था, लेकिन कसरत इस्तेमाल से ये इसम बन गया काले रंग के सांप के लिए, तवज्जो है, तो गलब इस्मियत इस पर आ गया, इसम होना इस पर गालिब हो गया, अब ये उसके लिए बतौर इसम है, लेकिन फिर भी ये गैर मुनसरिफ है। अस्वद एक तो वजन फेल है, दूसरा वस्फ असली है भाई, वस्फ असली है, तो वस्फ असली होने के एतबार से यह गैर मुनसरिफ है, और यह ता को कबूल कर लेता है, मुजक्कर हो तो अस्वद कहते हैं और मुअन्नस सांप हो तो क्या कहते हैं, अस्वदतुन कहते हैं। अब देखो अस्वद में कौन से दो सबब, एक वस्फ असली और दूसरा वजन फेल है, और यह तो ताको कबूल कर रहा है, अस्वदतुन मुअन्नस सांप के लिए इस्तेमाल होता है, तो यह तो गैर इंसराफ का सबब नहीं बनना चाहिए था, लेकिन यह फिर भी गैर मुनसरिफ है, क्यों, क्योंकि यह ताको कबूल कर रहा है और वजह से, और गैर मुनसरिफ है और वजह से, यह गैर मुनसरिफ है किस वजह से, वस्फ असली के एतबार से यह गैर मुनसरिफ है, इसमें कौन सा सबब है, एक वस्फ असली, और यह ता को कबूल कर रहा है वस्फ असली होने के एतबार से नहीं बल्कि गलब है इस्मियत की वजह से। यह जो अस्वद है ना, यह सिफत मुशब्बा है, और सिफत मुशब्बा अफअल वजन पर जब आए तो इसकी मुअन्नस फअला आती है, क्या आती है, फअला, अलिफ के बाद हमजा भी है, तो अस्वद अस्वद गैर मुनसरिफ है किस एतबार से, वस्फ असली के एतबार से, और वस्फ असली के एतबार से इसकी मुअन्नस अस्वदतुन आनी चाहिए थी या सौदा आनी चाहिए थी, सौदा आनी चाहिए थी, तो ये गैर मुनसरिफ है वस्फ असली के एतबार से, और ये जो ता को कबूल कर रहा है वो वसफ होने के एतबार से नहीं कबूल कर रहा बल्कि गलबाए इस्मियत की, अब इसम बन चुका है इसलिए ता को कबूल कर रहा है, तो इसका ता को कबूल करना उस एतबार से नहीं है जिस एतबार से यह गैर मुनसरिफ है बल्कि इसको ता को कबूल करना, और बात समझ, तो यह ता को कबूल कर रहा है और वजह से और गैर मुनसरिफ है और वजह से, बात समझ में आ गए। अब आइए आज का सबक देखिए भाई, कहते हैं वमा फीही अलमियतुन मुअस्सिरतुन اي كل اسم غير منصرف تكون فيه علمية مؤثرة في منع الصرف بالسببية المحضة او مع الشرطية بسبب اخر واحترز بذلك عما تجامع جي صاحب کافیہ نے اسباب منع صرف بیان کر دیے نو اسباب منع صرف ہیں اور صاحب کافیہ نے ہر ایک کی تفصیل بیان کر دی अब वो गैर इंसराफ की बहस के इख्तिताम पर दो कीमती जाबते आपको बतलाना चाहते हैं जिसके बाद यह गैर मुनसरिफ की बहस मुकम्मल हो जाती है। दो कीमती जाबते बयान फरमाना चाहते हैं। पहला जाबता आपको यह बतलाएंगे कि हर वो इसम जिसके अंदर अलमियत मुअस्सिर है यानी गैर इंसराफ का सबब बन रही है उस इसमें गैर मुनसरिफ को अगर नकेरा बना दिया जाए यानी उससे अलमियत को खत्म कर दिया जाए तो वो मुनसरिफ बन जाएगा। हर वो गैर मुनसरिफ जिसके अंदर एक सबब क्या है, अलमियत है, अलमियत उसके अंदर मुअस्सिर है, अलमियत सबब बन रही है गैर इंसराफ का, तो अगर आप उसमें से अलमियत को खत्म कर दें यानी उसको नकेरा बना दें तो वह मुनसरिफ हो जाएगा। जाब्ता समझ में आया, तो पहला यह जाब्ता जिक्र फरमाएंगे भाई कि हर वो इसम जिसके अंदर एक सबब आलमियत है उसको अगर नकेरा बना दिया जाए यानी आलमियत को खत्म कर दिया जाए तो वो मुनसरिफ हो जाएगा भाई। अब नकेरा वो कैसे बनेगा उसका तरीका भी आपको बतलाएंगे भाई साहिबे जामी।
नकेरा बनाने का तरीका यह है कि एक पूरी जमात का वो नाम रख दिया जाए तो वो अब नकेरा बन जाएगा। मसलन देखो, आपके एक साथी का नाम है जैद, तो जैसे ही मैं जैद कहता हूं आपके जहन में फौरन जैद की सूरत आ जाती है। मालूम हुआ लफ्ज जैद मारिफा है। मारिफा किसे कहते हैं? जो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करे। यह मारिफत से है। मारिफत का माना पहचान, यानी जिसकी आपको पहचान है वो है मारिफा, और जिसकी आपको पहचान नहीं वो है नकिरा। तो मारिफा उसे कहते हैं जो मुअय्यन जात पर दलालत करे। जैसे ही मैंने जैद कहा फौरन आपके जहन में जैद की सूरत आ गई, मालूम हुआ लफ्ज जैद मारिफा है, आलम है। और नकिरा जो है वो जात गैर मुअय्यन पर दलालत करता है। मसलन मैंने कहा किताब, देखो अब कोई मुअय्यन किताब आपके जहन में नहीं आई, भाई जो आपके सामने है ये भी किताब है, आपके साथी के सामने ये भी किताब है, तीसरे साथी के सामने है ये भी क्या है किताब। तो किताब देखो ये नकिरा है, ये किसी मुअय्यन चीज पर दलालत नहीं कर रहा। तो अब ये जो जैद जो आपके एक साथी का नाम था, अब ये अगर एक पूरी जमात का नाम रख दिया जाए, मसलन 10 तलबा हैं, उस पूरी जमात का नाम जैद रख दिया गया। अब देखो मैंने कहा कल मेरे पास जैद आया था, कुछ आपको पता चला उन 10 में से कौन सा साथी मुराद है? नहीं, आपको पता नहीं चला। मालूम हुआ जैद का लफ्ज नकेरा हो चुका है, क्योंकि अब ये एक का नाम नहीं है बल्कि पूरी जमात का नाम है, तो अब ये नकेरा है। तो आलमियत को खत्म करने का क्या तरीका है कि पूरी एक जमात का नाम क्या रख दिया जाए, एक पूरी जमात को उस नाम के साथ मौसूम कर दिया जाए, तो उससे आलमियत खत्म हो जाएगी। तरीका समझ में आ गया। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि हर वो इसम जिसके अंदर आलमियत मुअस्सिर थी और गैर इंसिराफ का सबब बन रही थी, उसको अगर नकेरा बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? मुनसरिफ बन जाएगा। भाई अब इसमें तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी बात याद रखें भाई, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि तानीस दो किस्म पर है, एक तानीस लफ्जी है और एक तानीस मानवी है। फिर ये जो तानीस लफ्जी है ये फिर तीन किस्म पर है, या तो ये तानीस बिता होगी यानी लफ्जों में गोलता आएगी, या ये तानीस होगी अलिफ मकसूरा के साथ या अलिफ ममदूदा के साथ। तो गोया तानीस लफ्जी तीन किस्म की हो गई, एक तानीस बिता, एक तानीस बिल अलिफिल मकसूरा और एक तानीस बिल अलिफिल ममदूदा। जबकि तानीस मानवी उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं कि वहां पर ता मुकद्दर होती है। क्या होती है? लफ्जों में नहीं होती, ता मुकद्दर होती है। तो गोया तानीस की कुल चार किस्में बन गई, एक तानीस लफ्जी है बिता, एक तानीस बिल अलिफिल मकसूरा है, एक तानीस बिल अलिफिल ममदूदा है, और एक तानीस मानवी है जो माना के एतबार से मुअन्नस है, लफ्जों में कोई तानीस वाली अलामत नहीं, और इसके अंदर भी दर असल ता मुकद्दर होती है। तो गोया तानीस बिता दो किस्म पर हो गई, एक तानीस लफ्जी, एक तानीस मानवी। दोनों में क्या है? ता है। एक में ता लफ्जों में है, एक में ता लफ्जों में नहीं है बल्कि मुकद्दर है। और तानीस बिल अलिफ इल मकसूरा वल ममदूदा, इसको भी एक ही किस्म हम बना लेते हैं कि तानीस बिल अलिफ है। तो गोया तानीस दो किस्म पर ही हो गई, एक तानीस बिल ता, एक तानीस बिल अलिफ। बात समझ में आ रही? तानीस बिल अलिफ, कोई मैंने मकसूरा या ममदूदा की कैद लगाई? नहीं लगाई, तो इसमें दोनों दाखिल हो गए। तो एक हुई तानीस बिल अलिफ और एक तानीस बिल ता हुई, और तानीस बिल ता फिर यह कितनी किस्म पर है? दो किस्म पर है, या ता लफ्जों में होगी या मुकद्दर होगी। तो तानीस बिता में तानीस लफ्जी भी आ गई, तानीस लफ्जी बिता और तानीस मानवी भी इसी के अंदर आ गई। बात समझ में आ गई? तो गोया तानीस की कुल कितनी किस्में हो गई? दो, एक तानीस बिता और एक तानीस बिल अलिफ। तानीस बिता फिर कितनी किस्म पर है? दो किस्म पर, या तानीस बिता है लफ्जन या तानीस बिता है मानन भाई। और तानीस बिल अलिफ भी कितनी किस्म पर? दो किस्म पर, या तानीस बिल अलिफ इल मकसूरा है या तानीस बिल अलिफ इल ममदूदा है। तो हासिल कलाम ये कि तानीस की दो किस्में हमने बना ली, एक तानीस बिता और एक तानीस बिल अलिफ। अब याद रखो ये जो असबाब मनासर्फ हैं, इन असबाब मनासर्फ में से वसफ वो ऐसा सबब है जिसके साथ आलमियत कभी जमा नहीं हो सकती। ये असबाब मनासर्फ जो नौ आपने पढ़े थे उनमें से वसफ ऐसा सबब है जिसके साथ कभी अलमियत जमा नहीं हो सकती, क्योंकि वसफ दलालत करता है जाते मुबहम पर और अलम दलालत करता है जाते मुअय्यन पर। जैद मैंने कहा तो एक मुअय्यन साथी का नाम है मसलन, वो फौरन आपके जहन में उसकी सूरत आ गई, तो अलम देखो मुअय्यन जात पर दलालत करता है और वसफ जाते मुबहम पर दलालत करता है। जैसे जारिब, जारिब का माना कोई ऐसी जात जो पिटाई करने वाली है। अब मैंने आपके सामने लफ्ज जारिब कहा, कोई आपको पता चला इससे कौन मुराद है? नहीं, पता नहीं चला। हो सकता है जारिब जैद हो सकता है अमर हो सकता है बकर हो सकता है खालिद हो। तो जारिब जात माल वसफ पर दलालत तो कर रहा है लेकिन वो जात मुतायन नहीं है बल्कि मुबहम है, आप उसको किसी भी जात के साथ जोड़ सकते हैं। तो वसफ जाते मुबहम पर दलालत करता है, या यूं कहो वो जाते गैर मुअय्यन पर दलालत करता है, और आलम जाते मुअय्यन पर दलालत करता है। तो ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। एक ही लफ्ज आलम भी हो वसफ भी हो तो इसका तो मतलब ये है ये मुअय्यन जाते भी दलालत कर रहा है और गैर मुअय्यन पर भी दलालत कर रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता। एक ही लफ्ज मुअय्यन जाते भी दलालत करे और गैर मुअय्यन पर भी दलालत करे। तो असबाब मनासर्फ में से वसफ ऐसा सबब है जो आलम के साथ कभी जमा नहीं होता। फिर कुछ असबाब मनासर्फ वो हैं जो खुद दो सबबों के कायम मकाम हैं, वो खुद दो सबबों के कायम मकाम हैं, वो आलमियत के मोहताज नहीं। आलमियत उनके साथ आ भी जाए तो वो मुअसर नहीं, वो अपना असर नहीं दिखाएगी क्योंकि वो लफ्ज पहले ही गैर मुनसरिफ है। और वो कौन कौन से सबब हैं जो दो सबबों के कायम मकाम हैं? एक जमा है और एक तानीस बिल अलिफ है। जमा यानी जिसमें मुंतहल जुमुआ का सीगा हो, यह जमा खुद दो सबबों के कायम मकाम है। और एक तानीस बिल अलिफ है, चाहे अलिफ ममदूदा हो चाहे अलिफ मकसूरा, यह भी दो सबबों के कायम मकाम है। तो यह दोनों क्या है, यह जमा और तानीस बिल अलिफ, यह खुद दो सबबों के कायम मकाम है, यह आलमियत के मोहताज नहीं। ये जब किसी लफ्ज में आ जाएंगे तो ये खुद ही दो सबबों के कायम मकाम बनेंगे। इनके साथ अगर आलमियत आ भी गई, वो आलमियत मुअसर नहीं, वो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बन रही क्योंकि कलिमा पहले से ही गैर मुनसरिफ है, क्योंकि वो जमा खुद ही दो सबबों के कायम मकाम है, या वो तानीस के जो अलिफ हैं वो खुद ही दो सबबों के कायम मकाम है। बात समझ में आ गई? तो वसफ उसके साथ कभी अलमियत जमा नहीं हो सकती, और जमा और तानीस बिल अलिफ के साथ अलमियत जमा तो हो सकती है लेकिन वो मुअसर नहीं, वो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेगी क्योंकि ये खुद दो सबबों के कायम मकाम है। और बाज सबब वो हैं कि जिनके साथ अलमियत जमा हो जाती है और मुअसर भी होती है, गैर इंसिराफ का सबब भी बनती है लेकिन उनके लिए शर्त नहीं है, और वो दो हैं, अदल और वजन फेल। अदल और वजन फेल के साथ आलमियत जमा होती है और मुअसर भी होती है, गैर इंसिराफ का सबब भी बनती है लेकिन इनके लिए शर्त नहीं कि आलमियत होगी तो अदल होगा, आलमियत होगी तो वजन फेल होगा, नहीं, इनके लिए शर्त नहीं है। तवज्जो है? बाज सबब वो हैं उनके साथ आलमियत जमा ही नहीं हो सकती, जैसे वसफ है, बाज के साथ आलमियत जमा तो हो सकती है लेकिन मुअसर नहीं, और वो कौन कौन से हैं? जमा है और तानीस बिल अलिफ है क्योंकि वो खुद दो सबबों के कायम मकाम हैं, और बाज के साथ आलमियत जमा होती है मुअसर भी होती है लेकिन शर्त नहीं होती उनके लिए कि आलमियत होगी तो ये खुद सबब बनेंगे वरना सबब नहीं बनेंगे, और वो दो क्या हैं? अदल और वजन फेल। तवज्जो है? अदल और वजन फेल। देखो, अदल और वजन फेल इनके साथ आलमियत जमा हो जाती है और मुअसर भी होती है, गैर इंसिराफ का सबब भी बनती है। जैसे उमर, उमर के अंदर कौन से दो सबब हैं? एक आलमियत है और एक अदल है। देखो, अदल के साथ आलमियत जमा हो गई और दोनों सबब बन रहे हैं गैर इंसिराफ का। इसी तरह वजन फेल के साथ भी आलमियत जमा हो जाती है, जैसे अहमद, अहमद इसमें एक सबब क्या? आलमियत, और एक वजन फेल, और आलमियत मुअसर भी है, यह गैर इंसिराफ का सबब बन रही है लेकिन इन दोनों के अंदर आलमियत शर्त नहीं है, आलमियत के बगैर भी यह मुअसर होते हैं, यह अदल और वजन फेल। जैसे सुलासा और मसलसा, सुलासा और मसलसा ये गैर मुनसरिफ हैं, एक सबब क्या? अदल, और एक सबब वसफ है। देखो, आलमियत नहीं है, आलमियत के बगैर भी अदल मुअसर हो रहा है। और इसी तरह वजन फेल, उसके साथ वो आलमियत के साथ जमा तो होता है जैसे अहमद में जमा हुआ था, लेकिन आलमियत उसके लिए शर्त नहीं। जैसे अहमर, देखो इसमें एक वजन फेल है एक वसफियत है, तो ये गैर मुनसरिफ है। तो देखो वजन फेल आया बगैर आलमियत के, तवज्जो है, वजन फेल के लिए आलमियत शर्त नहीं है, वरना यह अहमर गैर मुनसरिफ नहीं हो सकता था क्योंकि इसके अंदर तो आलमियत नहीं है भाई। तो अदल और वजन फेल ये दो ऐसे सबब हैं जिनके साथ आलमियत जमा भी होती है और ये आलमियत मुअसर भी है यानी गैर इंसराफ का सबब भी बनती है, लेकिन आलमियत इनके लिए शर्त नहीं। आलमियत हो या ना हो ये मुअसर रहते हैं। और कुछ असबाब वो हैं जिनके अंदर आलमियत शर्त है, अगर आलमियत होगी तो वो मुअसर हैं, वो गैर इंसराफ का सबब बनेंगे, अगर आलमियत नहीं तो वो गैर इंसराफ का सबब भी नहीं बनेंगे। और वो चार हैं भाई, एक तानीस बिता है, एक उजमा है, एक तरकीब है और एक अलिफनून मजीदतान है। कौन कौन से? तानीस बिता है, उजमा है, तरकीब है और अलिफ नून मजीदतान। देखो तानीस बिता में कितनी किस्म की तानीस आ गई? दो किस्म की तानीस बिता, चाहे लफ्जन हो चाहे मानन हो भाई, वो दोनों भी आ गए। तो तानीस बिता इसके अंदर आलमियत शर्त है, आपने पढ़ा था। तलहतु इसमें गोलता है, तानीस बिता है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या थी? अलमियत। अलमियत है तो ये तानीस बिता भी मुअसर है, वरना मुअसर नहीं। जैसे जारिबतुन, जारिबतुन के अंदर गोलता आ रही है, तानीस तो मौजूद है। अब आपसे कोई पूछे ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ, आप क्या कहेंगे? मुनसरिफ है, ये मुनसरिफ। और पूछे कि इसके अंदर कितने सबब हैं, आप क्या कहेंगे? ये एक भी सबब नहीं है, एक भी सबब नहीं। क्यों? क्योंकि तानीस बिता अगरचे है लेकिन मुअसर नहीं है। मुअसर ही कब होगी? जब उसके साथ अलमियत हो भाई। तो तानीस बिता तो है लेकिन वो मुअसर नहीं है, यानी सबब नहीं बन रही। तो एक भी सबब नहीं है इसके अंदर गैर इंसिराफ वाला। बात समझ में आ गई? तो तानीस बिता चाहे लफ्जन हो जैसे तलहा, तो उसके अंदर भी अलमियत शर्त, और तानीस मानवी हो जैसे जैनब, इसके अंदर भी अलमियत शर्त है। तो तानीस बिता चाहे लफ्जन हो या मानन, उसके अंदर आलमियत शर्त। इसी तरह तरकीब है, तरकीब के अंदर भी आलमियत शर्त है, जैसे बाला बक्का, बाला बक्का किसी का नाम रखा और आलम है, देखो आलमियत, आलमियत होगी तो यह तरकीब मुअसर है, आलमियत नहीं तो यह तरकीब भी मुअसर नहीं। इसी तरह उजमा है, जैसे इब्राहिमा, इब्राहिमा अजमी नाम है, उजमा गैर इंसिराफ का सबब बनता है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त क्या कि वो क्या होना चाहिए? अलम होना चाहिए। तो इब्राहिम भी क्या है? अलम है, इसलिए इसमें उजमा भी मुअसर और अलमियत भी मुअसर। और इसी तरह अलिफनून मजीदतान है, अलिफनून मजीदतान ये भी गैर इंसिराफ का सबब बनते हैं, लेकिन इनके अंदर भी शर्त अलमियत है, जैसे इमरान, उस्मान, सलमान। देखो इन सब के अंदर अलिफ़नून मजीदतान है और साथ साथ आलमियत भी है। तो बाज असबाब मनासर्फ ऐसे हैं जिनके साथ आलमियत जमा भी होती है, मुअसर भी होती है, और खुद उनके लिए वो आलमियत शर्त भी है। आलमियत है तो वो खुद भी मुअसर हैं, अगर आलमियत नहीं तो वो मुअसर भी नहीं। और वो कितने हैं? चार हैं। कौन कौन से? तानीस बिता और उजमा है और तरकीब है और अलिफनून मजीदतान। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम ये कि असबाब मनासर्फ चार किस्म पर हैं। कुछ वो हैं जो अलमियत के साथ जमा ही नहीं हो सकते, जैसे वसफ है। कुछ वो हैं जो अलमियत के साथ जमा तो हो सकते हैं लेकिन उनमें अलमियत मुअसर नहीं, क्योंकि वो खुद दो सबबों के कायम मकाम हैं। और वो दो हैं भाई, कौन कौन से? जमा और तानीस बिल अलिफ भाई। और कुछ असबाब वो हैं जिनके साथ आलमियत जमा भी होती है, मुअसर भी होती है, लेकिन शर्त नहीं। और वो दो हैं, कौन से दो? अदल है और वजन फेल है। और कुछ असबाब वो हैं जिनके साथ आलमियत जमा भी हो सकती है और मुअसर भी होती है और उनके अंदर शर्त भी होती है। और वो चार हैं, कौन कौन से? तानीस बिता है, उजमा है, तरकीब है और अलिफनून मजीदतान। बात समझ में आ गई? फिर सुनो भाई, भाई असबाब मनासर्फ हैं नौ। कितने हैं? नौ असबाब मनासर्फ हैं। इसमें से अलमियत को तो निकाल दो, क्योंकि अलमियत ही की तो हम बात कर रहे हैं। तो बाकी कितने रह गए, आठ। आठ में से एक वसफ है, वसफ को भी निकाल दो, क्योंकि वसफ तो अलमियत के साथ जमा ही नहीं हो सकता। बाकी कितने रह गए, सात। सात में से जमा को भी निकाल दो, क्योंकि जमा के साथ अगरचे अलमियत जमा भी हो जाए फिर भी वो मुआसिर नहीं, क्योंकि जमा खुद कितने सबबों के कायम मकाम, दो सबबों के कायम मकाम है, तो वो भी निकल गया। कितने रह गए, छह। और इसी तरह तानीस बिल अलिफ भी निकल गया, तानीस बिल अलिफ तो निकला है लेकिन तानीस बिल ता अभी भी बाकी है, तो गोया अभी भी छह सबब बाकी हैं। इन छह के अंदर चार के अंदर अलमियत शर्त है और दो के अंदर अलमियत शर्त नहीं। वो दो कौन से हैं जिनके साथ अलमियत शर्त नहीं है, अदल है और वजन फेल है। और वो चार कौन से हैं जिनके साथ अलमियत शर्त है, वो तानीस बिता है और उजमा है, तरकीब है और अलिफ नून मजीदातान है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मजीद तफसील याद रखो, मजीद तफसील कि इनमें से आदल और वसफ के साथ अलमियत जमा होती है लेकिन शर्त नहीं। तो एक लफ्ज था उसमें एक सबब आदल या वजने फेल था और एक सबब क्या था, अलमियत। तवज्जो है, जैसे उमर और अहमद, इन दोनों में, उमर और अहमद दोनों में एक सबब तो अलमियत है, दूसरा सबब उमर में क्या है, अदल है, और अहमद में क्या है, वजन फेल। इसमें से अगर हम अलमियत को खत्म कर दें, यानी एक पूरी जमात का नाम उमर रख दें या एक पूरी जमात का नाम अहमद रख दें, तो अलमियत खत्म हो जाएगी और यह कलीमा क्या बन जाएगा, मुनसरिफ। अलबत्ता एक सबब अभी भी इसमें है, अलमियत तो खत्म हो गई लेकिन एक सबब अदल या वजन फेल अभी भी इसके अंदर है। तवज्जो है, जबकि वो असबाब जिनके अंदर अलमियत शर्त है उससे जब आप अलमियत को खत्म करेंगे तो वो दूसरा सबब भी खत्म हो जाएगा, अब वो कलिमा भी मुनसरिफ होगा लेकिन उसमें अब एक भी सबब नहीं है, एक भी सबब नहीं है। जैसे देखो भाई, जैसे किसी का नाम तलहा है, तलहा में दो सबब कौन से, एक अलमियत है एक तानीस भी ता है, और तानीस भी ता के लिए क्या शर्त है, अलमियत शर्त है। तो जब आप तलहा से अलमियत को खत्म करेंगे, अब तानीस भी ता इसके अंदर मौजूद तो है लेकिन क्या अब वो सबब बनेगी, वो सबब नहीं बनेगी। तो गोया अब जब तलहा आपने पूरी जमात का नाम रख दिया तो अब ये मुनसरिफ हुआ, अलमियत खत्म हुई और अलमियत के साथ तानीस बिता का सबब होने वाला वसफ भी खत्म हो गया। तानीस बिता तो है लेकिन अब वो सबब नहीं बन रहा, तो तलहा अब मुनसरिफ बन गया, पूरी जमात का नाम आपने तलहा रख दिया और इसमें अब कितने सबब हैं, एक भी नहीं है। आलमियत तो आपने खत्म की और आलमियत खत्म हुई तो तानीस बिता भी खत्म, तानीस बिता खुद तो है लेकिन सबब नहीं बन रही। तवज्जो है, तानीस बिता जहां भी आ जाए वो सबब बनती थी। मैंने अभी मिसाल जिक्र की, जारिबतुन, मैंने आपके सामने एक सीगा रखा, इसमें फाइल है जारिबतुन मुअन्नस का, मुझे बताइए इसमें कितने असबाब मना सर्फ हैं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो कोई एतराज करेगा, भाई इसमें तानीस बिता है तो एक सबब तो है, आप कहें नहीं भाई तानीस बिता तो है लेकिन यह सबब नहीं बन रही, ये गैर इंसिराफ का, क्योंकि इसकी शर्त पूरी नहीं है। शर्त क्या है, आलमी, आलमियत नहीं है तो यह तानीस बिता बेशक हो लेकिन यह गैर इंसिराफ का सबब नहीं बन रही, क्योंकि शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। जैसे वजू नहीं तो नमाज भी नहीं, एक आदमी का वजू नहीं है वो आकर पूरी नमाज पढ़ लेता है, क्या नमाज हुई, नमाज की सूरत तो है लेकिन नमाज नहीं है, तो शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। तो जब तानीस बिता के अंदर आलमियत खत्म हुई, अब तानीस बिता है तो लेकिन वो सबब नहीं बन रही, तो गोया एक भी सबब अब इसके अंदर नहीं है। तो जारिबतुन में गैर इंसिराफ का एक भी सबब नहीं है, और तलहा जब इसको नकेरा बना दिया गया तो अब इसके अंदर भी एक भी सबब नहीं। आलमियत तो आपने खत्म की और तानीस बिता है तो लेकिन मुअसर नहीं, सबब नहीं बन रही। बात अच्छी तरह समझ में आ गई, हासिले कलाम फिर सुनो। असबाब मनासर्फ कितने, चार किस्म के हो गए। कुछ वो हैं जो आलमियत के साथ जमा ही नहीं हो सकते, जैसे वसफ है। कुछ वो हैं जो आलमियत के साथ जमा तो हो सकते हैं लेकिन आलमियत मुअसर नहीं, क्योंकि वो खुद दो सबबों के कायम मकाम हैं। और वो कौन कौन से हैं, जमा है और तानीस बिल अलिफ है। और कुछ असबाब वो हैं कि जो आलमियत के साथ जमा भी हो जाते हैं, आलमियत उनके अंदर मुअसर भी है यानी गैर इंसिराफ का सबब भी बनती है लेकिन अलमियत उनके लिए शर्त नहीं है। और वो दो हैं, कौन कौन से, अदल और वजन फेल। और चार सबब ऐसे हैं कि जिनके अंदर अलमियत जमा भी होती है, और मुअसर होती है यानी सबब भी बनती है और उनके लिए शर्त भी है। और वो कौन से चार हैं? तानिस बिता है और उजमा है, तरकीब है और अलिफनून मजीदा तान। भाई अलिफनून मजीदा तान, तो ये जो आखिरी दो किस्में हैं इन दो के साथ मालूम हुआ अलमियत मुअसर होकर जमा होती है। और इसमें कितने असबाब आ रहे हैं? छह, छह, दो में शर्त नहीं और चार में शर्त है। तो ये छह हैं जिनके अंदर अलमियत मुअसर होकर जमा होती है। इन छह को जब आप नकेरा बनाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? तो ये मुनसरिफ बन जाएंगे। अलबत्ता इनमें से अदल और वजन फेल जो है उसके साथ जो अलमियत थी, जब आप अलमियत को खत्म करेंगे तो अदल और वजन फेल फिर भी बाकी रहेगा, तो एक सबब रह जाएगा, वो कलिमा मुनसरिफ बनेगा और एक सबब अभी भी उसमें बाकी है। जबकि बाकी चार जिनमें अलमियत शर्त थी उसको जब आप नकेरा बनाएंगे तो जब उसे अलमियत खत्म करेंगे तो दूसरा सबब भी अब गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेगा, मुअसिर नहीं रहेगा, तो वो अब कलिमा मुनसरिफ बनेगा बगैर किसी सबब के, अब उसमें कोई भी सबब गैर इंसिराफ का नहीं है। अब पहले सिर्फ मतन देख लें जी। कहते हैं वमा फीही अलमियतुन मुअसिरतुन, और हर वो इसम जिसके अंदर अलमियत मुअसिर हो। अलमियत कितने असबाब के साथ मुअसिर थी? छह असबाब। कितने भाई? चार किस्में बनाई, बास के साथ तो अलमियत जमा ही नहीं हो सकती, बास के साथ जमा तो होती है लेकिन मुअसिर नहीं क्योंकि वो खुद दो सबबों के कायम मकाम है, और बास के साथ अलमियत जमा होगी शर्त बनेगी और बास के साथ शर्त नहीं बनेगी। वो आखिरी दो किस्में और उनमें कुल कितने असबाब थे? छह। वो छह असबाब हैं जिनके साथ आलमियत मुअसिर है, फिर उनमें से चार के अंदर आलमियत शर्त है और दो के अंदर आलमियत शर्त नहीं। तो कहते हैं वमा फीही आलमियतुन मुअसिरतुन, और हर वो इसम जिसके अंदर आलमियत मुअसिर है यानी गैर इंसिराफ का सबब बन रही है, इदा नुकीरा, जब उसको नकेरा बना दिया जाए। इबारत पर नजर है भाई, सिर्फ मतन हम हल कर रहे हैं। इदा नुकीरा, जब उसको नकेरा बना दिया जाए, सुरीफा, तो वो मुनसरिफ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मुनसरिफ हो जाएगा। लिमा तबैयना, उस वजह से जो जाहिर है, उस वजह से जो जाहिर है। भाई क्या जाहिर है? मिन बयान है मा तबैयना का। भाई क्या बात जाहिर है? कहते हैं मिन ये यानी के अन्नहा ला तुजामियो मुअस्सिरतन, कि अलमियत जो है ये जमा नहीं होती मुअस्सिर होकर, इल्ला मा हिया शर्तुन फीही, मगर उस सबब के साथ जिसमें ये शर्त हो। इधर देखिए, कहते हैं इस वजह से कि ये बात जाहिर है कि अलमियत जमा नहीं होती मगर उस सबब के साथ जिसमें ये, तवज्जो है इबारत पे नजर रखो, मिन अन्नहा ला तुजामियो मुअस्सिरतन, कि अलमियत ये जमा नहीं होती मुअस्सिर होकर। कितने असबाब के साथ मुअस्सिर होकर जमा होती है? छह। छह में से चार के अंदर शर्त है और दो में शर्त नहीं। वो छह के छह अब बयान करेंगे, सुनो भाई, कि ये अलमियत ये मुअस्सिर होकर जमा नहीं होती, इल्ला मा हिया शर्तुन फीही, मा से मुराद है सबब, मगर उस सबब के साथ जिसमें यह शर्त होती है। अलमियत मुअस्सिर होकर जमा नहीं होती मगर उस सबब के साथ जिसमें यह शर्त हो। कितने सबब आ गए? चार आ गए, चार आ गए। कितने रह गए? दो। वो अब इल्लल अदल व वज़नल फेली, मगर अदल और वजन फेल, इनमें शर्त नहीं है और साथ जमा भी होती है। बात समझ में आ गई? वह हुमा मुतजादानी। यहां से कि सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह, आपने हमें क्या कहा कि जिन में अलमियत मुअसर हो, तवज्जो है, जिन में अलमियत मुअसर हो जब उससे अलमियत को खत्म कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? मुनसरिफ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मुनसरिफ बन जाएंगे। और वो कितने सबब हैं जिनमें अलमियत मुअसर है? छह। कुल जिन में मुअसर है वो छह हैं। तो जिनके साथ अलमियत मुअसर है जब उसको नकेरा बनाएं तो वो क्या बन जाएगा? मुनसरिफ। कहते हैं भाई हमें आपकी बात तस्लीम नहीं, हो सकता है वो फिर भी गैर मुनसरिफ हो, दो सबब और भी मौजूद हो। तीन सबब थे अलमियत खत्म की, अब कितने रह गए? दो तो अभी भी रह जाएंगे। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब अलमियत खत्म करेंगे दो सबब बाकी रह ही नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि वो जो सबब बाकी हैं उसके अंदर या तो वो वाले होंगे जो शर्त वाले हैं, जिनमें अलमियत शर्त है, जिनमें क्या है, जिनमें अलमियत शर्त है, वो तो चाहे चारों इकट्ठे हो जाएं, जिनमें अलमियत क्या है, उनके साथ अलमियत आ गई, आप अलमियत को खत्म करेंगे चारों ही खत्म हो जाएंगे। तवज्जो है, फर्ज कर लो कोई इस समय उसमें चारों आ रहे हैं और साथ अलमियत भी है, पांचों हैं, अलमियत को खत्म करोगे तो अलमियत तो खुद खत्म हुई और वो चारों में शर्त खत्म तो मशरूत भी खत्म, तो मुनसरिफ बन जाएंगे। जैसे आजरबाईजान, आजरबाईजान, आजरबाईजान ये एक शहर या मुल्क का नाम है, और मुल्क और शहरों के नाम याद रखना ये हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं अरबी में, कभी कभी मुजक्कर भी इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन कलील है, ये हमेशा क्या इस्तेमाल होते हैं, ये गैर मुनसरिफ होते हैं। एक इनमें अलमियत होती है और एक तानीस, जितने भी शहरों और मुल्कों के नाम हैं वो अरबी जुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। एक इनमें अलमियत है, अलम है जगह का नाम है, और एक तानीस है। अलमियत, अलमियत तो जाहिर है मुल्क का नाम है या शहर का नाम है, और तानीस किस तरह कि ये बलदतुन या बुकअतुन की तावील में होते हैं, शहर है तो बलदतुन की तावील में, और मुल्क है तो बुकअतुन, बा काफ दो नुक्तों वाला आयन और गोलता, बुकअतुन, बुकअतुन कहते हैं जमीन के टुकड़े को, और बुकअतुन के आखिर में क्या है, गोलता। इसी तरह बलदतुन के आखिर में भी क्या है, गोलता। तो ये बलदतुन और बुकअतुन ये मुअन्नस हैं। तो किसी भी शहर और मुल्क का नाम हो वो अरबी जुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। एक सबब क्या है, अलमियत, और दूसरा तानीस है, किस तावील में, बलदतुन या बुकातुन की तावील में। तो आजरबाईजान ये भी एक शहर या एक मुल्क का नाम है, और इसके अंदर चार सबब हैं, एक आलमियत है, एक तानीस है क्योंकि बलदतुन या बुकातुन की तावील में है, अगर शहर का नाम है तो बलदतुन, मुल्क का नाम है तो बुकातुन, और एक अलिफ नून मजीदा तान भी आखिर में है, और उजमा भी है, यह अजमी नाम है। कितने सबब हो गए, चार, अलमियत, तानीस, उजमा और अलिफ नून मजीदा तान, और इससे अलमियत खत्म करो तो बाकी तीनों सबब भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उजमा में भी अलमियत शर्त है, तानीस, तानीस मानवी है ना, गोलता तो नहीं है, तानीस मानवी में भी अलमियत शर्त है, और अलिफ नून मजीदा तान में भी अलमियत शर्त है। तो देखा, तो ये जिन असबाब के अंदर अलमियत शर्त थी वो तो अगर कई इकट्ठे भी हो जाएं, जब अलमियत को खत्म करेंगे तो वो असबाब भी गैर मुअस्सिर हो गए, तो इसम मुनसरिफ बन गया, अब उसमें एक भी सबब नहीं है। और बाकी कौन से दो रह गए, अदल और वजन फेल, अदल और वजन फेल उनमें अलमियत शर्त नहीं। तवज्जो है, बात चल रही थी कि वो असबाब मनासर्फ जिनके साथ आलमियत मुअस्सिर होकर जमा होती है वो छह हैं, उन छह में से चार के अंदर आलमियत शर्त है और दो में आलमियत शर्त नहीं। वो चार जिनके अंदर आलमियत शर्त थी वो चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी थे, जब आप आलमियत को खत्म करेंगे तो वो सारे भी क्या हो जाएंगे, गैर मुअस्सिर हो जाएंगे, तो लफ्ज क्या बन जाएगा, मुनसरिफ बनेगा, और उसमें अब एक भी सबब नहीं है गैर इंसिराफ वाला। और बाकी कौन से दो सबब रह गए, अदल और वजन फेल, अदल और वजन फेल इनके साथ अलमियत जमा तो होती है लेकिन शर्त नहीं है, तो अलमियत खत्म करोगे तो अदल रह जाएगा, या अलमियत खत्म करोगे तो वजन फेल रह जाएगा। तो इश्काल होता है कि भाई हो सकता है अदल और वजन फेल दोनों इकट्ठे हो जाएं अलमियत के साथ, एक लफ्ज है उसमें अलमियत भी है, अदल भी है, वजन फेल भी है, तीनों है उसके अंदर। तवज्जो है, कौन कौन से सबब हैं, अलमियत है, अदल है और वजन फेल, और अदल और वजन फेल के लिए तो अलमियत शर्त नहीं, तो जब आप अलमियत खत्म करेंगे तो अदल और वजन फेल अभी भी उसमें बाकी है, तो हो सकता है अभी भी वो क्या हो, गैर मुनसरिफ। आपने तो हमें क्या कहा, अलमियत को खत्म करोगे तो वो लफ्ज क्या बन जाएगा, मुनसरिफ, हालांकि हो सकता है वो लफ्ज अलमियत को खत्म करने के बावजूद गैर मुनसरिफ ही रहे क्योंकि उसमें अदल और वजन फेल दो सबब हों। भाई तवज्जो है, आपने हमें क्या कहा, जिनमें अलमियत मुअस्सिर है अलमियत को खत्म करोगे तो वह क्या बन जाएगा, मुनसरिफ बन जाएगा। भाई हो सकता है अदल और वजन फेल और अलमियत तीनों किसी लफ्ज में इकट्ठे थे, अब अगर आप अलमियत खत्म भी कर दें अब भी कितने सबब हैं, दो सबब हैं, तो कलिमा क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा। आप तो हमें कह रहे हैं वो क्या बन जाएगा, मुनसरिफ। इश्काल समझ में आया, तो जवाब देंगे कि नहीं भाई, अदल और वजन फेल दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, एक दूसरे की जिद हैं, ये कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते एक लफ्ज के अंदर। भाई तवज्जो है, मैंने आपको बतलाया था कि अदल के छह औजान हैं, उलमा ने तलाश किया भाई पूरे कलाम अरब में कि कितने वजन हैं जिनमें अदल हुआ है, तो वो छह वजन हैं और उन छह में से एक भी वजन फेल नहीं, एक भी फेल वाला वजन नहीं। तो जब अदल के औजान अलग फेल के औजान अलग तो दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, एक वक्त में एक वजन आएगा दोनों वजन तो नहीं आ सकते भाई। और अदल के छह औजान कौन कौन से थे, मफअल फुआल फाल फ़िअल, फा के नीचे जेर और आयन साकिन फ़िअल, और फाअल फा और आयन दोनों पर फतहा, और फुआल जैसे उमर, मफअल फुआल फाल फ़िअल फाअल और फुआल, इनमें से सिर्फ एक फाअल वजन जो है वो वजन फेल है, फाअल जारब जाराबा, आखिरी हर्फ का एतबार नहीं क्योंकि आखिर तो माजी का मबनी होता है और इसम का आखिर हमेशा मबनी नहीं होता। तो देखो जाराबा, तो जारब और फाअल ये दोनों का वजन एक है, लेकिन मैंने बतलाया था आपको कि जो जारब जाराबा वजन है औजान फेल में से, जाराबा यानी माजी मारूफ का जो वजन है सुलासी मुजर्रद से, ये औजान फेल में से मोतबर नहीं, ये गैर इंसराफ का सबब नहीं बनता। शम्मारा या जुरीबा वगैरह ये वजन तो गैर इंसराफ का सबब बनते हैं, औजान फेल जो है ये सारे के सारे गैर इंसराफ का सबब नहीं बनते, ये गैर इंसराफ में मोतबर नहीं। कुछ खास वजन है जो उलमा ने किताबों में दर्ज फरमाए हैं कि फुला फुला वजन जो है, वजन फेल के कितने ही औजान हैं, बात समझ में आ रही, मारूफ भी है मजहूल भी है सुलासी मुजर्रद भी है सुलासी मजीद फी भी है रुबाई मुजर्रद भी है रुबाई मजीद फी भी, कितने ही बाब आपने पढ़े हैं, तो उनमें से सारे वजन जो हैं वो गैर इंसराफ का सबब नहीं बनते, बल्कि बास वजन है वो सबब बनते हैं और बास सबब नहीं बनते। तो ये जो जाराब यानी फाअल वजन है, फा और आइन दोनों पर फतहा है, ये जो माजी मारूफ का वजन है, ये वाला वजन फेल गैर इंसराफ में मोतबर नहीं, ये गैर इंसराफ का सबब नहीं बनता ये वाला वजन भाई। तो लिहाजा अदल के औजान कौन कौन से, मफअल फुआल फाल फ़िअल और फाअल और फुआल, इनमें से सिर्फ फाअल वजन जो है वो फेल वाला है, और अदल का भी यही वजन और फेल वाला भी, लेकिन ये औजान फेल में से ये वाला मोतबर ही नहीं है, तो गोया ये सिर्फ अदल का वजन है, औजन फेल में ये मोतबर ही नहीं। तो औजान फेल अलग जो गैर इंसराफ का सबब बनते हैं और मोतबर हैं वो अलग, और अदल के औजान अलग, तो ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं होते। लिहाजा आपका यह कहना कि कोई एक इसम ऐसा हो जिसमें अदल और वजन फेल दोनों आलमियत के साथ जमा हो जाएं, ये दुरुस्त नहीं है, अदल और वजन फेल दोनों आलम के साथ जमा नहीं हो सकते, एक वक्त में एक आएगा, या आलमियत के साथ अदल आएगा या वजन फेल, तो जब आलमियत को खत्म करेंगे तो सिर्फ अदल रह जाएगा या सिर्फ वजन फेल रह जाएगा, और एक सबब की वजह से तो लफ्ज गैर मुनसरिफ नहीं बनता, तो वह लफ्ज मुनसरिफ बन जाएगा और उसमें एक सबब बाकी रह जाएगा। सूरत समझ में आ गई अच्छी तरह, देखिए किताब पर मतन मतन हम हल कर रहे हैं भाई, कहते हैं वहुमा मुतजाद दानी, और वो दोनों मुतजाद हैं यानी अदल और वजन फेल दोनों आपस में मुतजाद हैं, फला यकूनु माहा इल्ला अहदुहुमा, लिहाजा अलमियत के साथ नहीं होगा मगर इन दोनों में से एक, एक वक्त में एक ही आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। फैदा नुकीरा, जब उस गैर मुनसरिफ को नकेरा बनाया जाएगा, जब नकेरा बनाया जाएगा तो बकिया बिला सबबिन, तो वो बगैर किसी सबब के बाकी रह जाएगा, औ अला सबबिन वाहिदिन, या एक ही सबब पर बाकी रहेगा, बकिया बिला सबबिन बगैर सबब के बाकी रह जाएगा, ये किन असबाब मना सर्फ में, जिनमें अलमियत शर्त थी, अलमियत खत्म तो वह असबाब खुद भी खत्म, क्योंकि शर्त खत्म तो मशरूत भी खत्म, तो बकिया बिला सबबीन, तो वो इसम बगैर किसी सबब के रह जाएगा यानी मुनसरिफ हो जाएगा, और औ अला सबबिन वाहिदिन, या एक सबब पर इसम बाकी रह जाएगा जब आप उसको नकेरा बनाएंगे, ये किसके अंदर, अदल और वजन फेल के अंदर। बात अच्छी तरह समझ में आ गई जी, अब आइए भाई शरा के साथ इस सारे मतन को हल करें। कहते हैं व माफी ही अलमियतुन मुअस्सिरतुन ऐ कुल्लुस मिन गैर मुनसरिफिन, हर ऐसा इसम जो गैर मुनसरिफ हो, व माफी ही अलमियतुन मुअस्सिरतुन, मालूम हुआ मा से मुराद इसम है भाई,
और इसम भी कौन सा जो गैर मुनसरिफ है। देखो मतन में आया था वम्मा, साहिब जामी ने उसका उसकी शरा किसके साथ की, अई कुल्लुस मिन गैर मुनसरिफिन। क्या वजह भाई, ये कुल्लुन का लफ्ज वो क्यों लेकर आए, कुल्लुन का लफ्ज इन्होंने क्यों बढ़ाया। वजह ये कि ये साहिब काफिया जाबिता जिक्र कर रहे हैं, कानून जिक्र कर रहे हैं, और कानून हमेशा कुल्ली होता है, इसलिए कुल्लुस मिन कहा, कुल्लू का लफ्ज लेकर आए। बतलाना चाहते हैं कि ये साहिब काफिया जाबता और कानून बयान कर रहे हैं, और कानून कुल्ली होता है भाई। जैसे अल्फाइल मरफून, हर फाइल क्या होता है, मरफू होता है। दूसरा कुल्लुन का लफ्ज इसलिए लेकर आए कि ये जो मां है ये मां मौसूला है, और इसमें मौसूल में उमूम का भी इहतमाल होता है और खसूस का भी, इसमें मौसूल में उमूम का भी इहतमाल होता है और खसूस का भी, कभी यह उमूम के लिए आता है कभी खसूस के लिए आता है। जैसे जा अल्लज़ी अकरमका, जा अल्लज़ी वो आदमी आया अकरमका, जिसने आपका इकराम किया था, जिसने आपकी इज्जत की थी। देखा मालूम हो कोई मुतअय्यन आदमी मुराद है। जा अल्लज़ी अकरमका, आया वो जिसने कि आपका इकराम किया था, तो ये अल्लज़ी से हर आदमी मुराद है या एक मुतअय्यन आदमी मुराद है। मुतअय्यन आदमी मुराद है जिसने आपका इकराम किया था, आपकी इज्जत की थी। खूब भाई, तो यहां अल्लज़ी उमूम के लिए नहीं है बल्कि खुसूस के लिए है, एक खास फर्द पर दलालत कर रहा है। तवज्जो है, बतलाना मैं ये चाहता हूं कि इसमें मौसूल खुसूस के लिए भी आता है और उमूम के लिए भी आता है। जैसे जा अल्लज़ी अकरमका, इसके अंदर जो अल्लज़ी आया वो किस लिए है, खुसूस के लिए है, वो एक खास मुतअय्यन फर्द पर दलालत कर रहा है, वो एक फर्द जिसने आपका इकराम किया था। दूसरा जुमला सुनो, अल्लज़ी यातीनी फलहू दिरहमुन, अल्लज़ी यातीनी जो कोई मेरे पास आएगा, फलहू दिरहमुन तो उसके लिए एक दिरहम है, यानी मैं उसे एक दिरहम दूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा, अल्लज़ी यातीनी जो मेरे पास आएगा, फलहू दिरहमुन तो उसके लिए एक दिरहम है। अब देखो यहां भी अल्लज़ी आया, और यहां अल्लज़ी से कोई मुतअय्यन आदमी मुराद है या उमूम है, इसके अंदर उमूम है, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको एक दिरहम दूंगा। तो देखो पहले जुमले में जा अल्लज़ी अकरमका, यहां अल्लज़ी किस लिए है, खुसूस के लिए, और अल्लज़ी यातीनी फलहू दिरहमुन, यहां अल्लज़ी किस लिए है, उमूम के लिए। तो इसमें मौसूल कभी उमूम के लिए आता है और कभी खुसूस के लिए आता है। तो यहां पर भी आया वमा फीही अलमियतुन मुअसिरतुन, ये मा और मन ये भी क्या है, अस्माए मौसूला है, आप पढ़ चुके हैं, तो ये भी कभी उमूम के लिए आते हैं और कभी खुसूस के लिए। साहिब जामी आपको बतलाना चाहते हैं कि यहां पर जो मा आया इसमें मौसूल ये खुसूस के लिए नहीं है बल्कि उमूम के लिए है, इसलिए कहा कुल्लुस्मिन हर इसम भाई। बात समझ में आ गई, कहते हैं वह माफी ही अलमियतुन मुअस्सिरतुन आई कुल्लुस मिन गैर मुनसरिफिन, यानी हर ऐसा इसम जो गैर मुनसरिफ है, तकूनु फीही अलमियतुन मुअस्सिरतुन जिसके अंदर अलमियत मुअस्सिर है। बात समझ में आ रही, कुल्लुस मिन, कुल्लू है मुजाफ, इस्मिन है मुजाफुन इले, और ये इस्मिन है मौसूफ, गैर मुनसरिफिन इसकी सिफत अव्वल है, इसमें है नकेरा और गैर मुनसरिफिन इसकी सिफत अव्वल, और तकून फीह आलमियतुन मुअसिरतुन ये पूरा जुमला फेलिया है, और नकेरा के बाद फेल आए तो वो उसके लिए क्या बनता है, सिफत, तो ये उसके लिए सिफत सानी है। आई कुल्लुस मिन गैर मुनसरिफिन तकून फीह आलमियतुन मुअस्सिरतुन फी मनअ सर्फी बिसबबियतिल महज़ती अव मअशर्तियति बिसबबिन आखर। भाई पहले इधर देखिए, बात समझ लें, कहना यह चाहते हैं हर वो इसम जिसके अंदर अलमियत मुअस्सिर है, गैर इंसिराफ का सबब बन रही है, चाहे वो उसके अंदर अलमियत सिर्फ सबब बन रही हो, चाहे सबब के साथ साथ शर्त भी बन रही हो। अदल और वजन फेल के अंदर अलमियत सिर्फ सबब बन रही है, शर्त उसके लिए नहीं। और तानीस बिता उजमा तरकीब और अलिफनून मजीदा तान, उसके अंदर अलमियत सबब भी बनती है और उनके लिए शर्त भी होती है। तो कहते हैं अकुल्लुस मिन गैर मुनसरिफिन, हर ऐसा गैर मुनसरिफ इसम
तकून फीही अलमियत उन मुअसरत, जिसके अंदर अलमियत जो है मुअसर होती है। किस चीज में मुअसर होती है? फी मन इस सर्फ, ही मन सर्फ यानी गैर मुनसरिफ होने में मुअसर होती है। बिस सबबियत महजती, महजे सबब होने की वजह से, महजे सबब होने की वजह से, और माशर्तीयति भी सबब इन आखर, या दूसरे सबब के साथ शर्त होने के साथ, सबब भी बनती है और दूसरे सबब के साथ शर्त भी बनती है। तो हर वो इसम जिसके अंदर आलमियत मुअसर हो, चाहे सबब महज होकर या दूसरे सबब के लिए शर्त होकर। आगे मतन में बात फिर पूरी होती है, मतन देखें, इदा नुकिरा, जब इसको नकेरा बनाया जाए, इस इसम को नकेरा बनाया जाए, तो आगे है नकेरा बनाया जाए सूरिफा, तो ये मुनसरिफ होता है। कहते हैं वहता राजा बिजालिका, भाई ये कैद क्यों लगाई? सिर्फ इतना कह देते व माफी ही अलमियत, हर वो इसम जिसके अंदर क्या हो? अलमियत। ये अलमियत के साथ मुअसरा की कैद क्यों लगाई कि अलमियत मुअसर भी हो? तो तफसील में बयान कर चुका हूं कि बाज सबब हैं उनके साथ अलमियत जमा तो हो जाती है लेकिन गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनती, क्योंकि वो खुद दो सबबों के कायम मकाम होते हैं। तो दरअसल उनको निकालना चाहते हैं कि उनके साथ अलमियत जमा तो होती है लेकिन मुअसर नहीं, तो उनको नकेरा बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो ये जो मुअसर की कैद लगाई, किस लिए लगाई? किसको निकालने के लिए? इन्होंने कहा जिसके अंदर अलमियत मुअसर हो, या मुअसर होने की कैद क्यों लगाई? किसको निकालना चाहते हैं? जमा को, वो जमा जो मुंतहल जुमों के सिगे पर हो उसको भी निकालना चाहते हैं, और तानीस बिल अलिफ को भी निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ अलमियत जमा तो हो सकती है लेकिन मुअसर नहीं। यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं वह तराजा भी जालिका, और इसके जरिए एहतराज किया, ये जो कैद मुअसरा की जिक्र की इसके जरिए एहतराज किया। आम मा, इस मां से मुराद है अलमियत भाई। क्या मुराद है? अलमियत भाई, तवज्जो है। तो वह तराजा भी जालिका, ये जो मुअसरा की कैद लगाई इसके जरिए एहतराज किया। आम मा, उस अलमियत से तू जामियो अलिफा ये तानीसी, जो जमा हो जाती है तानीस के दो अलिफों के साथ, और सीगता मुंतहल जुमुआ, या किसके साथ जमा हो जाती है? मुंतहल जुमुआ के सीगे के साथ। फइन्ना कुल वाहिदिन मिन्हुमा काफिन फी मनअ सर्फ, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक काफी है मनअ सर्फ में। तानीस के दो अलिफ वो खुद क्या है? गैर इंसिराफ के लिए काफी हैं, उनको अलमियत की हाजत नहीं। और इसी तरह जमा जो मुंतहल जुमुआ का सीगा है वो भी गैर इंसिराफ के लिए काफी है, वो अलमियत के मोहताज नहीं। ये माना है फई नकुल लवाहिदी मिनहुमा काफिन फी मन सर्फी, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक काफी है मन सर्फ में यानी गैर मुनसरिफ होने में। ला तासीर फी हिलिल अलमियती, इसमें अलमियत की कोई तासीर नहीं यानी अलमियत मुअसर नहीं। इबारत समझ में आ गई? फिर सुनो तर्जमा भाई, इन्होंने क्या कहा? व माफी ही अलमियतुन मुअसरतुन, सवाल पैदा हुआ यह मुअसरा की कैद क्यों लगाई? मैंने बतलाया ये उस अलमियत को निकालने के लिए है जो जो तानीस के दो अलिफ या जमा के सीगे यानी मुंतहल जुमुआ के सीगे के साथ जमा हो जाए। अब देखो वहां अलमियत तो मौजूद है लेकिन मुअसर नहीं, क्योंकि ये खुद ही दो सबबों के कायम मकाम। तो कहते हैं वक्त रजा बिजालिका, इस मुअसरा की कैद के जरिए एहतराज किया मातिन ने। अम्मा, उस अलमियत से तू जामियो अलिफाई तानीसी औ सीगता मुंतहल जुमुई, वो अलमियत जो जमा हो जाती है तानीस के दो अलिफों के साथ या मुंतहल जुमुआ के सीगे के साथ। फिन नकुल लवाहिदी मिनहुमा काफिन फी मन सर्फी, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक जो है यानी तानीस के जो दो अलिफ हैं और मुंतहल जुमुआ का जो सीगा है इनमें से हर एक काफी है फी मन सर्फी गैर मुनसरिफ होने में। ला तासीर फी ही लिल आलमियती, इसमें आलमियत की कोई तासीर नहीं है। इजा नुकीरा, जब इस इसम को नकेरा बना दिया जाए, मतन को मतन से जोड़ें, वमा फीही अलमियतुन मुअसिरतुन इदा नुकिरा, और हर वो इसम जिसके अंदर अलमियत मुअसिर है जब उसको नकेरा बना दिया जाए। भाई नकेरा कैसे बनाया जाए? साहिबे जामी अब आपको तरीका बतलाएंगे, मैंने बयान कर दिया। क्या बतलाया? कि पूरी एक जमात का नाम रख दिया जाए तो यह अलम क्या हो जाएगा? अब नकेरा बन जाएगा। बल्कि साहिब जामी दो तरीके बतलाएंगे आपको। एक सूरत यह कि एक पूरी जमात का नाम, मसलन जैद एक आदमी का नाम नहीं बल्कि आप पूरी जमात का नाम जैद रखते हैं, तो अब यह नकेरा बन गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि कल मैंने जैद को देखा, आपको पता चला कौन सा जैद मुराद है? नहीं, क्योंकि अब यह नकेरा बन चुका है भाई। और दूसरा तरीका यह कि आलम बोलकर वो जात न मुराद ली जाए बल्कि उसका मशहूर वसफ मुराद ले लिया जाए, मशहूर वसफ मुराद ले लिया जाए। जैसे मिसाल जिक्र करेंगे, लिकुल्ली फिरआउनिन मूसा, हर फिरौन के लिए मूसा है। अब यहां फिरौन बोलकर वो फिरौन बादशाह नहीं मुराद बल्कि उसका वसफ मशहूर मुराद है, यानी जालिम होना। क्या मुराद है? जालिम था वो। और मूसा बोलकर हजरत मूसा अलैहि सलाम पैगंबर नहीं मुराद बल्कि उनका मशहूर वसफ मुराद है, यानी कि वो हक को इख्तियार करने वाले थे, वो आदिल थे, अदल करने वाले थे। बात समझ में आ गई? तो यहां आप देखो, नाम जिक्र किए गए लेकिन नाम बोलकर जात नहीं मुराद बल्कि वो साहिब आलम का जो मशहूर वसफ था वो मुराद ले लिया गया। तो अब भी ये नकेरा है, आलमियत इससे क्या हो गई? खत्म, क्योंकि जात मुराद नहीं है। बात समझ में आ गई? देखिए साहिब जामी तफसील बयान कर रहे हैं, कहते हैं इदा नुकीरा, जब उसको नकेरा बना दिया जाए, बी आयु औ वाला, यह बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं किस तरह नकेरा बना दिया जाए। कहते हैं बी आयु औ वाला, बाई सूरत के तावील कर ली जाए अल आलमु, उस आलम की विवाहिद मिनल जमातिल मुसम्माति बिही, बी आयु औ वाला आलमु विवाहिद मिनल जमातिल मुसम्माति बिही, कि तावील कर ली जाए उस आलम की किसी एक के साथ, उस जमात में से जो इस नाम के साथ मौसूम है, वो जमात जो इस नाम के साथ मौसूम है उनमें से किसी एक की तावील कर ली जाए। मसलन जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पूरी जमात का नाम हमने क्या रख दिया? जैद। उसमें 10 तलबा हैं, पूरी जमात का नाम क्या? जैद। अब मैंने कहा रअईतु ज़ैदन, मैंने एक जैद को देखा, कौन मुराद है? उस पूरी जमात में से एक, उस पूरी जमात में से एक। देखा, यह माना है बी आयु अव्वल आलमु बिवाहिद मिनल जमातिल मुसम्माति बिही, बाई सूरत के तावील कर ली जाए आलम की वो जमात जो इस नाम के साथ मौसूम है उनमें से एक की, कि तावील कर ली जाए इस आलम के जरिए किसी एक की जो उस जमात में से जो इस नाम के साथ मौसूम है। नहु हाजा जैदन, ये जैद है। व रअईतु जैदन आखरा, और मैंने एक और जैद को देखा। हाजा जैदन, हाजा जैदन, ये जैद है भाई। उस जमात वाला एक तालिब इलम आया, मैंने कहा हाजा जैदन, ये क्या है? जैद है। तवज्जो है? अब देखो ये उस जमात में से एक है, तवज्जो है। मुहशी लिखते हैं कि दो जुमले साहिब जामी ने जिक्र किए, देखो इबारत पे नजर रखो, हाजा जैदन, ये जैद है, और दूसरा जुमला है रअईतु जैदन आखरा, मैंने एक और जैद को देखा। रअईतु जैदन आखरा, दूसरे जुमले में तो जैदन की सिफत आखर लाए और आखर पर कोई अलिफ लाम है नहीं, तो मालूम हुआ जैदन नकेरा है। मैंने एक दूसरा जैद देखा, मालूम हुआ कोई और जैद भी है, तो दूसरे जुमले में तो जैदन नकेरा है कतई तौर पर। पहले जुमले के अंदर मुहशी लिखते हैं हाजा जैदन, ये जैद मारिफा है, ये जैद मारिफा है, जबकि बाद शुरुहात वाले लिखते हैं कि ये जैद भी नकेरा है, उसी जमात में से एक साथी आया, तो आप क्या कहते हैं? हाजा जैदन, ये जैद है, यानी ये एक जैद है। यूं तर्जमा करो, हाजा जैदन, ये एक जैद है। और यही ज्यादा मुनासिब है कि दोनों जुमलों में जो लफ्ज जैद आया उसको वो नकेरा है भाई, वो क्या है? नकेरा है भाई, क्योंकि ये बात उस आलम की चल रही है जिससे आलमियत खत्म कर दी गई है, तो दोनों में ये नकेरा है। तो हाजा जैद का क्या तर्जमा करेंगे? ये जैद है, ये तर्जमा न करें हाजा जैदन, ये एक जैद है। जैसे मैं कहता हूं हाजा किताबुन, ये एक किताब है, हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है, तो ये भी 10 तलबा की जमात का नाम जैद रखा है तो ये भी उनमें से एक है। हाजा जैदन, ये एक जैद है। वर आई तो जैदन आखरा, और मैंने एक दूसरे जैद को देखा, तो देखा दोनों जुमलों में लफ्ज जैद नकेरा है, पूरी जमात जो इस नाम के साथ मौसूम थी उनमें से एक का हमने इरादा किया है यहां पर भाई, उनमें से एक का इरादा किया है। फइन्नहु उरीदा बिही, इसलिए क्योंकि इस नाम जैद के जरिए इरादा किया गया है, अल मुसम्मा बिजैदिन, वो जो जैद के नाम के साथ मौसूम है उसका यहां इरादा किया गया है, और वो एक है या ज्यादा है, ज्यादा है तो ये नकेरा है भाई। औ युजअल इबारतन अनिल वस्फिल मुश्तहिरी साहिबुहु बिही, औ युजअल इबारतन, या उस अलम को इबारत बना दिया जाए, अनिल वस्फिल मुश्तहिरी, उस वसफ से अल मुश्तहिरी के मशहूर है, साहिबुहु उस अलम वाला बिही, उस वसफ के साथ। तवज्जो है, साहिबुहू की हा जमीर राजे है आलम को, साहिबुहू ऐ साहिबुल आलमी, भाई फिरौन बोलकर फिरौन नहीं मुराद, बल्कि उसका उस आलम वाले का मशहूर वसफ मुराद है कि वो जालिम था भाई। तो साहिबुहू हा जमीर किसको राजे, आलम को, साहिबुल आलम। तो अनिल वस्फिल मुश्तहिरी साहिबुहू बिही, बिही की हा जमीर राजे है वसफ को। भाई इधर देखिए, दूसरी सूरत यह है आलम को नकिरा बनाने की, आलमियत को खत्म करने की, कि आलम बोलकर वो जात मुराद न लें, साहिब आलम मुराद न लें, बल्कि उसका मशहूर वसफ मुराद ले लें। फिरौन बोलकर फिरौन की जात मुराद न लें, बल्कि उसका मशहूर वसफ यानी जालिम होना मुराद ले लें। ये माना है, औ युज आला इबारतन, या उस आलम को इबारत बनाया जाए, यानी उससे मुराद लिया जाए, उस आलम को इबारत बनाया किससे, वसफ मशहूर से, यानी उससे वसफ मशहूर मुराद लिया भाई। औ युज आला इबारतन अनिल वसफिल मुश्तहिरी साहिबुहु बिही, या उस आलम को इबारत बना दिया जाए, यानी उस आलम को किनाया बनाया जाए, अनिल वसफिल मुश्तहिरी, वो वसफ अल मुश्तहिरी साहिबुहु के जिसका साहिब मशहूर है, बिही उस वसफ के साथ। ये अल मुश्तहिर, ये सिफत बिहाल मुतअल्लिक ही है, लफ्जों में अल वसफ है मौसूफ और अल मुश्तहिर है उसकी सिफत, लेकिन अल मुश्तहिर का फाइल साहिबुहु आगे आ रहा है, साहिबुहु क्या है, आगे आ रहा है, तो वो वसफ नहीं मशहूर बल्कि आलम वाला मशहूर है। कौन मशहूर है, आलम वाला मशहूर है बिही उस वसफ के साथ। तो ये सिफत बिहाली मुतअल्लिक ही है, लफ्जों में मुश्तहिर सिफत है वसफ की और माना में सिफत है ये साहिब आलम की भाई। तो कहते हैं, औ युजअला इबारतन अनिल वस्फिल मुश्तहिरी साहिबुहु बिही, या उस आलम को किनाया बना लिया जाए, उसको इबारत बना लिया जाए उस वसफ से कि मशहूर है साहिबुहु उस आलम वाला, उस नाम वाला बिही उस वसफ के साथ, उससे इसको इबारत बना लिया जाए, यानी वो वसफ मुराद ले लिया जाए, आसान लफ्जों में यूं कहो। नहव कौलिहिम, जैसे कि अरबों का कौल है, लिकुल्ल फिरऔन मूसा, हर फिरऔन के लिए मूसा है, ऐ लिकुल्ल मुबतिल मुहिक। मुबतिल कहते हैं बातिल को इख्तियार करने वाला, ना हक को इख्तियार करने वाला, उसको क्या कहते हैं, मुबतिल। और मुहिक कहते हैं हक को इख्तियार करने वाला। तो यहां फिरौन से फिरौन बोलकर फिरौन नहीं मुराद बल्कि मुबतिल मुराद है, और मूसा बोलकर मूसा अलैहि सलाम नहीं मुराद बल्कि मुहिक मुराद है, यानी उनके मशहूर वसफ जो हैं वो यहां मुराद हैं। लिकुल्ल फिरौन इन मूसा ऐ लिकुल्ल मुबतिल मुहिक, हर बातिल परस्त के लिए मुहिक हक परस्त है, हर बातिल परस्त के लिए कोई ना कोई हक परस्त होता है जो अल्लाह पैदा फरमाते हैं, जो उस बातिल परस्त को खत्म कर देता है, मिटा देता है। बात समझ में आ गई, जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन जैसे सरकश को मिटा दिया भाई। तो देखो, फिरौन गैर मुनसरिफ है, मूसा भी गैर मुनसरिफ है, दोनों अजमी नाम हैं, और अलमियत भी है और उजमा भी है, तो दोनों गैर मुनसरिफ, लेकिन यहां पर दोनों मुनसरिफ हैं क्योंकि अलम बोलकर जात नहीं मुराद बल्कि उनका वस्फ मशहूर मुराद है। इस वक्त ये मुनसरिफ हैं भाई, इसीलिए लिकुल्ल फिरऔन, देखा फिरऔन पर आप कसरा भी पढ़ रहे हैं और तनवीन भी पढ़ रहे हैं, तो ये इस वक्त मुनसरिफ हो चुके हैं। माना समझ में आ गया। तो कहते हैं इस जब उसको नकेरा बनाया जाएगा तो सोरीफा, तो वो मुनसरिफ हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई, सारा हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।